नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार द्वारा मांगे स्वीकार किए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। निवेश अनुकूलता सूचकांक में हिमाचल प्रदेश ने पर्वतीय और उत्तर पूर्वी राज्यों में हासिल किया तीसरा स्थान। प्रदेश में जल शुद्धिकरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए लागू होगी 2000 करोड़ रुपए की व्यापक योजना। कांग्रेस सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा अगले माह शुरू करेगी बड़ा जन आंदोलन। और प्रदेश में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, अगले 48 घंटों में कुछ जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा मांगे स्वीकार किए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की, जिसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से संबंधित मुख्य मांगों पर चर्चा की गई। नड्डा ने कहा कि CJP की इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।
सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है।
आत्महत्या करने वालों को मुआवजे के मुद्दे पर नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों और विनियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री को भेजे त्याग पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने त्याग पत्र इसलिए दिया ताकि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें। हिमाचल प्रदेश में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में पर्वतीय और उत्तर पूर्वी राज्यों में तीसरा स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि ये उपलब्धि राज्य सरकार द्वारा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने और निवेशकों का विश्वास मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने लगातार बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान पर विशेष बल देते हुए व्यापार सुगमता को बढ़ावा दिया है। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ये उपलब्धि राज्य सरकार द्वारा निवेश पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए प्रयासों की महत्वपूर्ण मान्यता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जल शक्ति विभाग में इस वित्त वर्ष में 4000 पद भरे जाएंगे। ऊना जिले में हरोली के पालकवाह में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार विभाग को सुदृढ़ बनाने सहित युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने पर विशेष जोर दे रही है। अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता सुधारने और जल शुद्धिकरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की व्यापक योजना लागू की जाएगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगले वर्ष से जल शक्ति विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने की परंपरा शुरू की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला जिले में सुन्नी पेयजल योजना का 95% कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने आज सुन्नी में एक कार्यक्रम में बताया कि अगले एक माह के भीतर ये योजना जनता को समर्पित कर दी जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और सुन्नी बस डिपो को 10 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सुन्नी लुहरी सड़क के विस्तारीकरण का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विदेश से MBBS करने वाले स्नातकों की इंटर्नशिप अवधि एक वर्ष करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने COVID-19 महामारी में उत्पन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अध्ययन करने वाले स्नातकों को एक वर्ष की इंटर्नशिप की अनुमति प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान निष्पक्ष, व्यावहारिक और छात्र हितैषी दृष्टिकोण के साथ करेगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि जन समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करना सरकार की प्राथमिकता है। घुमारवीं में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार न केवल जन समस्याओं को गंभीरता से सुन रही है बल्कि इनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। धर्माणी ने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ आगामी अगस्त महीने से बड़ा जन आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। शिमला में आज हुई एक बैठक के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के विरोध में भाजपा मंडल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जन आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा विभिन्न मुद्दों को जनता के बीच ले जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
जन आंदोलन मंडल स्तर से प्रारंभ किया जाएगा। जो जन विरोधी निर्णय तालाबंदी की गई है स्कूलों की, कॉलेजेस की, अस्पतालों की, पीएचसीज की, उन तालाबंदी को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर जन आंदोलन हो, सड़कों की दुर्दशा को लेकर, बिजली पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर, और 3.5-4 साल में जनता को परेशान करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है, तो जनता के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अगस्त के महीने से और निरंतर जन आंदोलन करेगी।
इस अवसर पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनावी वायदे पूरा न कर कांग्रेस सरकार ने जनता को निराश किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और विकास कार्य पूरी तरह ठप हुए हैं।
आगे बढ़ने के लिए सरकार सुनी जाती, लेकिन यहाँ आगे बढ़ने की बात तो छोड़िए, सारे काम जो चले हुए थे सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं, और उन तमाम मुद्दों को लेकर के चाहे झूठी गारंटियां दी है, उन गारंटियों को भी एक्सपोज करने का, जब ये हमारा कार्यक्रम हमारा जन आंदोलन का होगा वो भी शुरू होगा, और उसके अतिरिक्त जो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांग दी, जन विरोधी फैसले, टैक्स पर टैक्स लगाते हुए जो हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर जो है जिस प्रकार से बोझ लाद दिया, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात करने वाले।
जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में जनता ने परिवर्तन की शुरुआत कर दी है और भाजपा इस जनादेश को अंजाम तक पहुंचाएगी। स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक समिति के सभापति संजय रतन की अध्यक्षता में आज शिमला स्थित विधानसभा परिसर में हुई। इस बैठक में ठियोग में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति छात्रावास भवन निर्माण को लेकर चर्चा की गई। समिति ने शिक्षा विभाग को 1 माह के भीतर छात्रावास भवन निर्माण के लिए भूमि का चयन कर इसे हिमुडा को सौंपने के निर्देश दिए हैं। समिति ने हिमुडा को इस भवन का निर्माण अपने संसाधनों से 1 वर्ष के भीतर करने को कहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पिछले कल उदयपुर किलाड़ सड़क मार्ग पर कड़ू नाले के समीप हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शोक संदेश में उन्होंने मृतकों के परिजनों से गहरी संवेदना जताई है। पठानिया ने आम लोगों से बरसात के मौसम में अनावश्यक यात्राओं से बचने और एहतियात बरतने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 136वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। इसके प्रभाव से वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। कांगड़ा जिले में हाल ही में हुई मूसलाधार वर्षा व बादल फटने की घटनाओं से अब तक करीब 80 करोड़ रुपए के नुकसान का प्रारंभिक आकलन किया गया है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि सभी विभागों को राहत व पुनर्बहाली के कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान कुछ जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार द्वारा मांगे स्वीकार किए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। निवेश अनुकूलता सूचकांक में हिमाचल प्रदेश ने पर्वतीय और उत्तर पूर्वी राज्यों में हासिल किया तीसरा स्थान। प्रदेश में जल शुद्धिकरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए लागू होगी 2000 करोड़ रुपए की व्यापक योजना। कांग्रेस सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा अगले माह शुरू करेगी बड़ा जन आंदोलन। और प्रदेश में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, अगले 48 घंटों में कुछ जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।